एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद प्रभावशाली किताब पर चर्चा करने वाले हैं, एक ऐसी किताब जिसने इतिहास की एक बड़ी घटना को देखने का नजरिया ही कह सकते हैं बदल दिया।
नमस्कार जी, हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन नाइट की मशहूर कृति द मेक्सिकन रेवोल्यूशन की। ये किताब जो है 20वीं सदी की शुरुआत में हुई मेक्सिकन क्रांति यानी 1910 से 1920 उसका एक बहुत ही गहरा और नया विश्लेषण पेश करती है।
हाँ, और ये सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं है, जैसा आपने कहा, ये उस उथल पुथल के सामाजिक ताने बाने की पड़ताल है ना?
बिल्कुल, ये अंदर तक जाती है।
और देखिए, ये सिर्फ मेक्सिको के इतिहास का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है इस किताब में जो सवाल उठाए गए हैं कि भाई समाज कैसे बदलते हैं, आम लोगों की ताकत क्या होती है, क्रांति के बाद असल में होता क्या है,
हाँ,
ये तो आज भी मतलब दुनिया भर में प्रासंगिक है।
सही कहा।
और ये समझना कि कैसे एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण और कम पढ़ी लिखी आबादी ने अपने देश की किस्मत बदल दी, ये अपने आप में कमाल की बात है।
बिल्कुल, नाइट हमें यही दिखाते हैं कि ये क्रांति कुछ नेताओं या पॉलिटिकल ग्रुप्स की कहानी भर नहीं थी, बल्कि ये लाखों आम मैक्सिकन लोगों की उम्मीदों, उनके संघर्षों और उनकी जो वो सामूहिक कार्रवाई थी उसका नतीजा थी।
तो चलिए फिर इस अहम विमर्श में और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि एलन नाइट हमें क्या सिखाते हैं।
जरूर।
तो सबसे पहले एलन नाइट के बारे में थोड़ा जानते हैं, आखिर वो कौन है और क्यों उनकी बात इस विषय पर इतनी वजनदार मानी जाती है।
देखिए, एलन नाइट जो है वो आधुनिक लैटिन अमेरिका और खासकर मेक्सिको के इतिहास के मतलब सबसे सम्मानित विद्वानों में से एक माने जाते हैं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनका जमीनी शोध।
जमीनी शोध मतलब
उन्होंने दशकों तक मेक्सिकन अभिलेखागारों में आर्काइव्स में काम किया है, उन दस्तावेजों को खंगाला है जिन्हें शायद पहले उतना महत्व नहीं दिया गया था।
अच्छा, यानी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखा बल्कि गहराई में जाकर तथ्यों को समझाया है।
बिल्कुल, और उनका नजरिया अलग कैसे है ये भी जरूरी है।
हाँ बताइए।
उनका नजरिया सोशल हिस्ट्री का है, जिसे हम सामाजिक इतिहास कहते हैं। इसका मतलब है कि वो इतिहास को राजाओं, राष्ट्रपतियों या जनरलों की कहानी की तरह नहीं देखते। उनका ध्यान आम लोगों पर होता है, किसान, मजदूर, औरतें, स्थानीय समुदाय।
अच्छा,
वो पूछते हैं कि भाई इन लोगों के लिए क्रांति का मतलब क्या था, उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों लिया, उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ा।
ये तो वाकई एक अलग दृष्टिकोण है, इतिहास को नीचे से ऊपर देखना।
हाँ,
ये हमें उन आवाजों को सुनने का मौका देता है जो अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों में कहीं दब जाती है।
सही कहा। और उनकी स्पैनिश भाषा पर जबरदस्त पकड़ और मेक्सिकन संस्कृति की गहरी समझ, इससे उन्हें उन स्रोतों तक पहुंच मिली जहां कई विदेशी इतिहासकार नहीं पहुंच पाए। एक और दिलचस्प बात है उनका दोहरा दृष्टिकोण। एक तरफ वो ऑक्सफोर्ड के प्रशिक्षित इतिहासकार हैं, तो उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मिलता है। दूसरी तरफ मेक्सिकन स्रोतों और वहां की जो हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं उनमें उनकी गहरी पैठ है। इससे वो न सिर्फ विदेशी पूर्वाग्रहों को चुनौती दे पाते हैं, बल्कि मेक्सिको की जो राष्ट्रवादी व्याख्याएं हैं उन पर भी सवाल उठा सकते हैं। किसी एक खेमे में नहीं बंधते।
कमाल है, ऐसा संतुलन तो कमी देखने को मिलता है। चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं, द मेक्सिकन रेवोल्यूशन। इसका मूल सार क्या है, मतलब किस बारे में है ये किताब?
देखिए, ये किताब 1910 से 1920 के उस तूफानी दशक का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव विश्लेषण है जिसने मेक्सिको को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने देश को पोर्फिरियो डियास की लंबी तानाशाही से बाहर निकाला और एक ज्यादा आधुनिक राष्ट्र बनने की राह पर डाला, हालांकि वो रास्ता जाहिर है सीधा या आसान नहीं था।
नाइट का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ये महज एक राजनीतिक तख्तापलट या सिर्फ सत्ता संघर्ष नहीं था, जैसा कि कुछ लोग पहले मानते थे।
तो फिर क्या था? नाइट इसे कैसे देखते हैं? अगर सिर्फ तख्तापलट नहीं था तो?
नाइट जोर देकर कहते हैं कि यह एक वास्तविक सामाजिक क्रांति थी, सोशल रेवोल्यूशन।
सामाजिक क्रांति?
हाँ, यानी इसने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि समाज का जो बुनियादी ढांचा है, शक्ति संतुलन है, लोगों की सोच है, उसको भी गहराई से प्रभावित किया।
बेशक इसकी अपनी सीमाएं थीं, अपने विरोधाभास थे, क्रांति अपने सारे वादे पूरे नहीं कर पाई, लेकिन नाइट के अनुसार इसने मेक्सिको में महत्वपूर्ण और स्थायी मतलब स्ट्रक्चरल बदलाव किए।
संतुलित और क्या कहते हैं, बारीक तस्वीर पेश करते हैं, वो क्रांति की वास्तविक उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, कैसे इसने हाशिए पर पड़े समूहों को आवाज दी, कैसे जमीन और अधिकारों के सवाल उठाए, लेकिन साथ ही वो इसकी विफलताओं और जो अनपेक्षित परिणाम हुए उनको भी नजरअंदाज नहीं करते।
तो ये किताब सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो समझना चाहता है कि क्रांतियां कैसे काम करती हैं और लैटिन अमेरिका के इतिहास की इस अहम घटना का क्या महत्व है।
अच्छा, और ये किताब हमें किस तरह की यात्रा पे ले जाती है? क्या ये सिर्फ घटनाओं का क्रम है, मतलब 1910 में ये हुआ, 11 में ये? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। यात्रा शुरू होती है क्रांति की जड़ों से, यानी पोर्फिरियो डियाज के शासनकाल, जिसे पोर्फिरियातो कहते हैं, उससे। नाइट दिखाते हैं कि कैसे डियाज के दौर में जो आर्थिक विकास हुआ उसने ही असंतोष के बीज बो दिए थे।
अच्छा, विकास ने असंतोष के बीज बो दिए?
हाँ, ये दिलचस्प है। फिर वो 1910 से 1920 तक की जो जटिल घटनाएं हैं उनकी परतें खोलते हैं। वो विश्लेषण करते हैं कि कैसे अलग अलग सामाजिक समूह, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, स्थानीय नेता, एलिट्स जिन्हें कहते हैं, यहाँ तक कि विदेशी ताकतें अपने अपने मकसदों और हालात के हिसाब से इस क्रांति में शामिल हुए और इसे दिशा दी।
और आपने शुरू में क्षेत्रीय विविधता की बात की थी, उसका क्या मतलब है यहाँ?
हाँ, ये नाइट के विश्लेषण का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। वो बताते हैं कि मेक्सिको कोई एक जैसा देश नहीं था, मोनोलिथिक नहीं था। अलग अलग इलाकों की अपनी अर्थव्यवस्था थी, अपने सामाजिक संबंध थे, अपनी राजनीतिक परंपराएं थी। इसलिए क्रांति का रूप भी हर जगह अलग था। जैसे मोरेलोस में एमिलियानो जापाता का किसान आंदोलन जमीन के सवाल पर केंद्रित था।
जापाता का नाम तो सुना है।
बिल्कुल। जबकि उत्तर में पांचोविया का आंदोलन ज्यादा मिलिट्री किस्म का और लोक लुभावन था। और फिर वेनुस्तियानो करांजा जैसे नेता थे जो एक ज्यादा संगठित राष्ट्रवादी राज्य बनाना चाहते थे। तो इन अलग अलग दृष्टिकोणों के टकराव और समझौतों ने ही क्रांति के अंतिम स्वरूप को तय किया। ये कोई एक कहानी नहीं बल्कि कई समानांतर कहानियां थीं जो एक साथ चल रही थीं।
तो ये सिर्फ लड़ाई झगड़े का इतिहास नहीं है बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर भी नजर डालता है।
हाँ, बिल्कुल। नाइट क्रांति के सामाजिक, आर्थिक और यहाँ तक कि सांस्कृतिक प्रभावों की भी जांच करते हैं। अलग अलग वर्गों पर, नस्लीय समूहों पर, क्षेत्रों पर इसका क्या असर पड़ा, लिंग संबंधों, धर्म और कला संस्कृति पर क्रांति में क्या छाप छोड़ी, ये सब उनके विश्लेषण का हिस्सा है। वो इसे एक पूरी सामाजिक घटना के रूप में देखते हैं।
चलिए अब किताब के मुख्य हिस्सों में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। नाइट कहानी की शुरुआत कहाँ से करते हैं?
आपने कहा डियाज के शासनकाल से।
हाँ,
पहला बड़ा हिस्सा पोर्फिरिया तो यानी पोर्फिरियो डियाज के लंबे शासन 1876 से 1910 पर केंद्रित है। नाइट मानते हैं कि डियाज ने मेक्सिको में स्थिरता तो लाई और आर्थिक आधुनिकीकरण भी किया, रेल लाइनें बिछी, विदेशी निवेश आया, लेकिन वो दिखाते हैं कि यह विकास ऊपर ऊपर था और इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।
किस तरह की कीमत?
विकास तो अच्छा होता है ना? नाइट का तर्क है कि यह विकास बहुत असमान था, अनइक्वल। इसका फायदा मुट्ठी भर देशी विदेशी एलीट्स, मतलब अभिजात वर्ग को मिला। ज्यादातर आबादी, खासकर गांवों में रहने वाले किसान और जो मूल निवासी समुदाय थे, वो हाशिए पर धकेल दिए गए। उनकी जमीनें बड़े खेतों और विदेशी कंपनियों के लिए छीन ली गईं। उनकी जो पारंपरिक जीवन शैली थी वो उजड़ गई। तो ऊपर से शांति दिख रही थी लेकिन नीचे असंतोष खोल रहा था।
और राजनीतिक तौर पर क्या लोगों के पास अपनी बात कहने का कोई जरिया था? कुछ था ऐसा?
बिल्कुल नहीं। डियाज का शासन तानाशाही था, डिक्टेटरशिप, चुनाव महज दिखावा थे, राजनीतिक व्यवस्था बहुत कठोर और बंद थी, रिजिड। जो नई सामाजिक ताकतें इस आर्थिक विकास से उभरी, जैसे पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग या शहरों में बनते मजदूर संगठन, उनके लिए इस व्यवस्था में कोई जगह नहीं थी। नाइट इसे एक प्रेशर कुकर की तरह बताते हैं जिसमें दबाव बढ़ता जा रहा था और भाप निकालने का कोई रास्ता नहीं था।
इसीलिए 1910 में जब फ्रांसिस्को मदेरो ने चुनौती दी तो विस्फोट हो गया।
एग्जैक्टली।
मदेरो, तो अगला चरण मदेरो की क्रांति 1910-1913 है
जी।
नाइट इसे कैसे देखते हैं?
नाइट मदेरो के आंदोलन को डियाज की तानाशाही के खिलाफ एक लिबरल, मतलब उदारवादी, संवैधानिक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। मदेरो खुद एक अमीर जमींदार परिवार से थे। उनका मुख्य नारा था प्रभावी मताधिकार, कोई पुनर्चुनाव नहीं, इफेक्टिव सफरेज, नो री इलेक्शन। वो राजनीतिक सुधार चाहते थे, लोकतंत्र चाहते थे।
लेकिन क्या ये काफी था? आपने तो कहा कि असंतोष तो सामाजिक और आर्थिक ज्यादा था।
बिल्कुल, और यही नाइट का मुख्य बिंदु है। मदेरों के राजनीतिक नारे ने अलग अलग तरह के असंतुष्ट समूहों को डियास के खिलाफ एकजुट होने का एक मंच जरूर दिया। किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी सब उनके साथ आ गए। इसी एकता से क्रांति को शुरुआती कामयाबी मिली और डियास को हटना पड़ा। लेकिन सत्ता में आने के बाद मदेरों ने उन गहरी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं की जिन्होंने लोगों को हथियार उठाने पर मजबूर किया था। वो बस पॉलिटिकल सिस्टम ठीक करना चाहते थे।
तो मतलब लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई?
नहीं, जमीन का सवाल, मजदूरों के अधिकार, स्थानीय स्वायत्तता, इन पर मदेरों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि उनके समर्थक ही उनसे दूर होने लगे। जापाता जैसे नेता जो जमीन सुधार चाहते थे वो मदेरों के खिलाफ हो गए।
ओहो,
ये पुरानी व्यवस्था के लोग भी मदेरों से खुश नहीं थे। अंत में 1913 में सेना के एक जनरल विक्टोरियानो ह्वेर्ता ने तख्ता पलट कर दिया और मदेरों की हत्या कर दी गई। इस घटना ने क्रांति को और भी ज्यादा हिंसक और उग्र बना दिया।
इसके बाद तो शायद क्रांति का सबसे भयानक दौर शुरू होगा जिसे नाइट महान क्रांति कहते हैं।
हाँ, 1913 से 1915 का दौर, ये क्रांति का दिल है कह सकते हैं, जहां लड़ाई सिर्फ सत्ता के लिए नहीं थी बल्कि समाज को बदलने के लिए थी। इस दौर में एमिलियानो जापाता और पांचो विया जैसे लोकप्रिय नेता उभरे। ये वो नेता थे जो सीधे आम लोगों की आवाज थे। किसान अपनी जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, मजदूर हड़तालें कर रहे थे, यूनियन बना रहे थे। क्षेत्रीय नेता अपने अपने इलाकों में बड़े सुधार लागू कर रहे थे। यह सचमुच नीचे से उठी क्रांति थी जिसमें लोग खुद अपना भविष्य गढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
जापाता और विया इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? क्या सिर्फ उनके करिश्मे की वजह से, मतलब पर्सनैलिटी?
नाइट कहते हैं कि करिश्मा तो था, लेकिन उनकी असली ताकत ये थी कि वो अपने समर्थकों की जरूरतों और आकांक्षाओं को समझते थे और उनके लिए लड़ते थे। जापाता मोरेलोस के किसानों के लिए जमीन चाहते थे। उनका नारा था धरती और स्वतंत्रता। विया उत्तर के काउबॉयज, खनिकों और छोटे किसानों के नेता थे। ये नेता मैक्सिकन समाज के लिए अलग अलग रास्ते पेश कर रहे थे। जापाता का सपना एक तरह के कृषि आधारित समाजवाद का था, विया का राष्ट्रवाद ज्यादा लोक लुभावन किस्म का था। इन्होंने मदेरों के उदार संविधानवाद को सीधी चुनौती दी।
लेकिन आखिर में तो वेनुस्तियानो कारांजा का गुट जीता, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जिन्हें कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ?
हाँ, अगला चरण 1915 से 1920 कारांजा और संवैधानिक क्रांति का है। कारांजा भी डियाज के खिलाफ लड़े थे, लेकिन वो जापाता और विया की तरह रेडिकल, मतलब कट्टरपंथी नहीं थे। वो एक ज्यादा संगठित राष्ट्रवादी नेता थे। नाइट का तर्क है कि कारांजा की जीत न तो क्रांति के साथ पूरी तरह विश्वासघात थी और न ही उसका आदर्श रूप। ये एक तरह का कह सकते हैं व्यवहारिक समझौता था।
व्यवहारिक समझौता, इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाइए।
मतलब ये कि कारांजा और उनके समर्थकों यानी संविधानवादियों ने महसूस किया कि जापाता और विया के रास्ते शायद देश को एकजुट नहीं रख पाएंगे या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य नहीं होंगे। उन्होंने क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण सुधारों को अपनाया, जैसे जमीन सुधार और मजदूर अधिकार, लेकिन उन्हें एक ज्यादा व्यवस्थित केंद्रीकृत राज्य के ढांचे में फिट किया।
अच्छा,
उन्होंने एक नया संविधान बनाया, लेकिन साथ ही निजी संपत्ति और विदेशी निवेश को भी बनाए रखा। उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों को हराया, लेकिन पूरी तरह से पुरानी व्यवस्था भी वापस नहीं लाए। एक बीच का रास्ता निकाला।
और इसी दौर में 1917 का वो मशहूर मेक्सिकन संविधान आया।
बिल्कुल, 1917 के संविधान को एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज मानते हैं। ये उस समय दुनिया के सबसे प्रगतिशील संविधानों में से एक था। इसमें मजदूरों के अधिकारों जैसे 8 घंटे का कार्य दिवस, हड़ताल का अधिकार, जमीन के पुनर्वितरण और शिक्षा के अधिकार जैसे प्रावधान थे। अनुच्छेद 27 तो बहुत क्रांतिकारी था, जिसने कहा कि जमीन और जो प्राकृतिक संसाधन है वो मूल रूप से राष्ट्र की संपत्ति है।
लेकिन क्या ये संविधान जमीनी हकीकत बन पाया, लागू हुआ ठीक से?
नाइट कहते हैं कि संविधान ने एक ढांचा तो दे दिया, एक फ्रेमवर्क, लेकिन उसे लागू करना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। कारांजा सरकार ने इसकी शुरुआत की, लेकिन देश युद्ध से तबाह हो चुका था, अर्थव्यवस्था चौपट थी और समाज बटा हुआ था। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, तो संविधान एक वादा था जिसे पूरा करने में दशकों लगे और शायद आज भी वो संघर्ष कहीं ना कहीं जारी है।
और किताब के अंत में नाइट क्रांति के कुल असर का आकलन करते हैं, 10 साल की इस उथल पुथल के बाद आखिर बदला क्या?
हाँ, अंतिम अध्याय क्रांति की विरासत मतलब लेगेसी पर है। नाइट का निष्कर्ष है कि तमाम सीमाओं, विफलताओं और विरोधाभासों के बावजूद क्रांति ने मेक्सिको में गहरे और स्थायी बदलाव किए। इसने राजनीतिक भागीदारी का दायरा बढ़ाया। अब सिर्फ एलीट्स ही नहीं बल्कि आम लोग भी राजनीति में मायने रखते थे। इसने जमींदारी प्रथा को कमजोर किया और सामाजिक असमानता थोड़ी कम हुई। इसने नई संस्थाएं बनाई, जैसे एक ज्यादा शक्तिशाली केंद्रीय सरकार, सरकारी पार्टियां, मजदूर संगठन, जिन्होंने 20वीं सदी में मेक्सिको के विकास को दिशा दी।
और क्या इसका असर मेक्सिको के बाहर भी हुआ, दुनिया पर?
हाँ, नाइट इस पर भी जोर देते हैं। मेक्सिकन क्रांति लैटिन अमेरिका और दुनिया भर के जो उपनिवेशवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन थे उनके लिए एक प्रेरणा बनी। ये दिखाने वाला पहला बड़ा उदाहरण था कि कैसे एक विकासशील देश विदेशी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है और अपने रास्ते पर चल सकता है।
ये तो बहुत ही व्यापक और गहरा विश्लेषण है। अगर हमें इस पूरी कहानी से कुछ मुख्य विषय या संदेश निकालने हो तो वो क्या होंगे?
देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी संदेश है आम लोगों की ताकत और सामाजिक क्रांति। नाइट बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ये क्रांति नेताओं ने नहीं बल्कि आम जनता ने चलाई थी। किसान, मजदूर, स्थानीय समुदाय ये क्रांति के असली नायक थे।
हाँ।
ये दिखाता है कि असली सामाजिक बदलाव नीचे से आता है, ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। जब लोग अपने हक के लिए उठ खड़े होते हैं तो बड़े बड़े साम्राज्य हिल जाते हैं।
ये बात तो आज भी कितनी सच लगती है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि जब लोग एकजुट होते हैं तो बदलाव ला सकते हैं। अच्छा, दूसरा विषय क्या होगा?
दूसरा है क्षेत्रीय विविधता और राष्ट्रीय एकता का तनाव। जैसा हमने पहले बात की, क्रांति हर जगह एक जैसी नहीं थी। ये विविधता एक तरफ तो ताकत थी क्योंकि आंदोलन स्थानीय जरूरतों के हिसाब से ढल सकता था, लेकिन दूसरी तरफ ये कमजोरी भी थी क्योंकि इससे अलग अलग गुटों में टकराव हुआ और राष्ट्रीय एकता बनाना मुश्किल हो गया। ये दिखाता है कि बड़े आंदोलनों में स्थानीयता और राष्ट्रीय लक्ष्यों के बीच संतुलन साधना कितना जरूरी और मुश्किल होता है।
हाँ, ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल है। तीसरा विषय शायद वर्ग संघर्ष और सामाजिक बदलाव की जटिलता से जुड़ा है।
बिल्कुल, क्रांति ने मेक्सिको के वर्ग संबंधों को हिलाकर रख दिया। इसने जमींदारों की ताकत कम की, किसानों और मजदूरों को कुछ अधिकार दिए,
लेकिन
इसने असमानता और शोषण के नए रूप भी पैदा किए। क्रांति के बाद जो नया एलीट वर्ग उभरा उसने कई बार पुराने एलीट्स की जगह ले ली। ये हमें याद दिलाता है कि क्रांतियां सीधी रेखा में नहीं चलती, उनके नतीजे अक्सर अप्रत्याशित और विरोधाभासी होते हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं ये चीजें।
और चौथा विषय जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो है राज्य निर्माण का विरोधाभास। ये क्या है?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्रांति शुरू तो हुई थी एक दमनकारी राज्य के खिलाफ। लोग ज्यादा स्वतंत्रता चाहते थे, ज्यादा स्थानीय स्वायत्तता चाहते थे, लेकिन क्रांति का नतीजा क्या हुआ?
क्या हुआ?
पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा केंद्रीकृत राष्ट्रीय राज्य का निर्माण। 1917 का संविधान और उसके बाद की सरकारों ने राज्य की पहुंच और ताकत को बहुत बढ़ा दिया। ये दिखाता है कि क्रांतियों को सफल होने के लिए सिर्फ पुरानी व्यवस्था को तोड़ना ही काफी नहीं होता, उन्हें नई संस्थाएं भी बनानी पड़ती हैं जो स्थिरता ला सकें और सुधारों को लागू कर सकें। लेकिन इस प्रक्रिया में अक्सर वही केंद्रीकरण वापस आ जाता है जिसके खिलाफ क्रांति शुरू हुई थी।
ये तो वाकई विरोधाभास है। और पांचवा विषय अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राष्ट्रीय संप्रभुता का है।
सही, मेक्सिकन क्रांति सिर्फ मेक्सिको के अंदर की घटना नहीं थी, उस पर अमेरिका का भारी आर्थिक और राजनीतिक दबाव था। यूरोपीय देशों के अपने हित थे और दुनिया एक वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था से जुड़ी थी। नाइट दिखाते हैं कि कैसे मेक्सिकन क्रांतिकारियों को लगातार अपनी राष्ट्रीय आज़ादी की इच्छा और बाहरी दुनिया के आर्थिक सच्चाइयों के बीच संतुलन बनाना पड़ा। ये संघर्ष आज भी कई विकासशील देशों के सामने है।
और क्या हिंसा के बारे में नाइट कुछ कहते हैं? क्रांति में तो बहुत खून खराबा हुआ।
हाँ, देखिए, नाइट हिंसा का महिमा मंडन नहीं करते, वो इसकी भारी मानवीय कीमत को मानते हैं।
लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि हिंसा ने पुरानी जमी हुई सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को तोड़ने में एक जरूरी भूमिका निभाई। कई बार बदलाव लाने के लिए मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देना जरूरी होता है और इसमें संघर्ष और हिंसा शामिल हो सकती है। ये एक असहज करने वाला सच है, पर है।
अंत में संस्कृति और पहचान पर भी तो असर पड़ा होगा।
हाँ बिल्कुल, क्रांति ने मेक्सिको की राष्ट्रीय पहचान को गहराई से बदला। इसने स्वदेशी संस्कृति और आम लोगों के योगदान को महत्व देना शुरू किया। कला, साहित्य, संगीत में क्रांति एक बड़ा विषय बन गई। इसने नए नायक, नए मिथक और नए प्रतीक गढ़े जिन्होंने 20वीं सदी में मैक्सिकन होने का मतलब परिभाषित किया।
इस किताब में जरूर कुछ ऐसी बातें होंगी जो दिमाग में अटक जाती हैं। क्या कुछ ऐसे मुख्य विचार या कोट्स जैसे कह सकते हैं जिन्हें हम साझा कर सकें जो नाइट के तर्कों का निचोड़ हों?
हाँ, सीधे शब्दों में उद्धरण देना तो मुश्किल है, लेकिन उनके कुछ केंद्रीय विचारों को हम ऐसे समझ सकते हैं। पहला, मेक्सिकन क्रांति कोई एक अकेली सीधी साधी घटना नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक बदलाव की एक उलझी हुई बहुस्तरीय प्रक्रिया थी जो मेक्सिको के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शक्ल ले रही थी। ये उनके विश्लेषण की कुंजी है, जटिलता और क्षेत्रीय विविधता पर जोर।
यानी इसे किसी एक फॉर्मूले में फिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, दूसरा विचार क्या होगा?
दूसरा, क्रांतिकारी नेताओं की कामयाबी सिर्फ उनकी होशियारी या बहादुरी पर निर्भर नहीं थी, बल्कि इस बात पर थी कि वो अपने समर्थकों के असली मुद्दों को कितना समझते थे और उनके लिए कितना लड़ते थे। यह आम लोगों की भूमिका पर उनके जोर को दिखाता है और इतिहास के महान व्यक्ति सिद्धांत को चुनौती देता है। नेता तभी सफल होते हैं जब वो जनता से जुड़े हों।
ये बहुत जरूरी बात है। तीसरा विचार शायद क्रांति की विरासत से जुड़ा है।
हाँ, तीसरा, क्रांति की सबसे बड़ी और स्थायी उपलब्धि शायद कोई एक कानून या सुधार नहीं, बल्कि मेक्सिको की राजनीतिक संस्कृति का बदलना था। एक ऐसी संस्कृति से जहां आम लोगों की कोई पूछ नहीं थी, एक ऐसी संस्कृति की ओर जहां उनकी भागीदारी और आवाज का महत्व था। ये दिखाता है कि क्रांति का असर सतही नहीं बल्कि गहरा था, भले ही सारे लक्ष्य हासिल न हुए हो।
चौथा विचार बाहरी दुनिया के प्रभाव के बारे में था, जैसा आपने बताया।
बिल्कुल, चौथा, मेक्सिको के क्रांतिकारियों को हमेशा अपनी राष्ट्रीय आजादी के सपनों और बाहरी दुनिया की आर्थिक और राजनीतिक हकीकतों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना पड़ा। ये याद दिलाता है कि कोई भी क्रांति या सामाजिक आंदोलन शून्य में नहीं होता, उस पर बाहरी ताकतों का असर पड़ता ही है।
और आखिरी पांचवा विचार शायद नतीजों के बारे में एक संतुलित नजरिया देता है, थोड़ा रियलिस्टिक।
हाँ, पांचवा, क्रांति ने एक नया मेक्सिको बनाया, लेकिन ये न तो वो सपनों का देश यूटोपिया था जिसकी कल्पना इसके सबसे कट्टर समर्थकों ने की थी, और न ही ये पुरानी व्यवस्था की पूरी तरह वापसी थी जैसा इसके विरोधी चाहते थे। ये नाइट के यथार्थवादी और संतुलित निष्कर्ष को दर्शाता है। बदलाव महत्वपूर्ण थे, लेकिन अधूरे और जटिल थे।
ये सारे विचार तो इतिहास के हैं, पर क्या इनसे हम आज के जीवन के लिए भी कुछ सीख सकते हैं? मतलब कोई प्रैक्टिकल सबक है इनमें?
जरूर है, जरूर है। पहला सबक तो आज के सामाजिक आंदोलनों को समझने में मिलता है। नाइट का विश्लेषण दिखाता है कि कामयाब होने के लिए आंदोलनों को स्थानीय मुद्दों को बड़े राजनीतिक विजन से जोड़ना पड़ता है, चाहे वो पर्यावरण का आंदोलन हो, सामाजिक न्याय का या लोकतंत्र का। उन्हें अलग अलग हितों वाले लोगों को एक साझा लक्ष्य के लिए साथ लाना होता है, और जैसा नाइट ने दिखाया, स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से रणनीति बदलना भी जरूरी है।
हाँ, भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में ये बात और भी माने रखती है।
बिल्कुल,
नेतृत्व के बारे में भी तो सबक मिलता है। ज़ापाटा जैसे नेताओं से हम क्या सीख सकते हैं?
हाँ, उनसे हम जवाबदेही और जमीन से जुड़ाव का सबक सीखते हैं, अकाउंटेबिलिटी और कनेक्ट। नाइट दिखाते हैं कि जो नेता अपने समर्थकों के प्रति ईमानदार रहे और उनसे जुड़े रहे, वो ज्यादा प्रभावी हुए। आजकल भी हम देखते हैं कि जो नेता सिर्फ ऊपर से निर्देश देते हैं या लोगों की सुनते नहीं, वो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। सच्चा नेतृत्व जमीनी हकीकत से पैदा होता है और उसके प्रति जवाबदेह रहता है।
और सामाजिक बदलाव लाने और उसे संस्थागत रूप देने, मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज करने के बारे में क्या सीखें?
मेक्सिको का 1917 का संविधान दिखाता है कि बड़े बदलाव लाने के लिए सिर्फ जोश और जुनून काफी नहीं होता। आपको ऐसे व्यवहारिक रास्ते और संस्थाएं बनानी पड़ती हैं जो उन ऊंचे आदर्शों को जमीन पर उतार सकें। इसके लिए आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच संतुलन साधना पड़ता है। हमें ऐसी संस्थाएं चाहिए जो लोगों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे सकें, वरना क्रांति की ऊर्जा बिखर सकती है या गलत दिशा में जा सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में भी कुछ सोचने को मिलता है ना?
हाँ, मेक्सिकन क्रांति का अनुभव दिखाता है कि कैसे देश बाहरी दबावों के बीच अपनी संप्रभुता, अपनी सॉवरेनिटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में, जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतना असर होता है, हर देश को, खासकर विकासशील देशों को, अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक हकीकतों के बीच ये संतुलन लगातार साधना पड़ता है।
संघर्ष के बाद शांति और पुनर्निर्माण के लिए भी शायद कुछ सबक हैं, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के लिए।
बिल्कुल। मेक्सिको कैसे एक दशक के गृह युद्ध के बाद धीरे धीरे एक संवैधानिक व्यवस्था की ओर बढ़ा, ये उन समाजों के लिए महत्वपूर्ण सबक देता है जो आज संघर्ष से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। शांति सिर्फ हथियार डाल देने से नहीं आती, बल्कि संघर्ष के जो मूल कारण हैं उनको संबोधित करने और सभी पक्षों को साथ लेकर चलने से आती है।
और अंत में एक समावेशी राष्ट्रीय पहचान कैसे बनाई जाए, इंक्लूसिव नेशनल आइडेंटिटी।
हाँ, क्रांति ने कोशिश की कि मेक्सिको की पहचान सिर्फ स्पैनिश मूल के एलिट्स तक सीमित ना रहे, बल्कि उसमें स्वदेशी समुदायों और आम लोगों की संस्कृति को भी जगह मिले। ये आज उन सभी समाजों के लिए प्रासंगिक है जहां अलग अलग नस्ल, धर्म या संस्कृति के लोग रहते हैं, और जहां एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनाने की चुनौती है जिसमें सब अपनापन महसूस कर सकें, कोई हाशिए पर न छूटे।
तो इस पूरी गहरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे बड़ा सबक या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही इस किताब से?
मेरे लिए सबसे प्रभावशाली बात यही है कि इतिहास को सिर्फ बड़े लोगों की कहानी की तरह नहीं देखना चाहिए। नाइट हमें जबरदस्त तरीके से दिखाते हैं कि इतिहास की असली धारा आम लोग बनाते हैं, उनके छोटे छोटे संघर्ष, उनकी उम्मीदें, उनकी सामूहिक कार्रवाई। जब हम इतिहास को नीचे से ऊपर देखते हैं तो हमें एक बिल्कुल अलग और ज्यादा सच्ची तस्वीर मिलती है, और वो विरोधाभास भी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक राज्य विरोधी लोकप्रिय विद्रोह ने अंततः एक ज्यादा शक्तिशाली राज्य को ही जन्म दिया। क्रांतियां सीधी नहीं होती।
हाँ, ये बात तो है, और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख यह है कि सामाजिक बदलाव एक, कह सकते हैं, दोधारी तलवार है। इसके लिए जहां एक तरफ लोगों का लगातार सड़कों पर उतरना, आवाज उठाना, यानी जमीनी स्तर पर सक्रिय रहना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसी नई संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनाना भी उतना ही जरूरी है जो उन बदलावों को टिकाऊ बना सकें। सिर्फ पुरानी चीजें तोड़ने से काम नहीं चलता, नई और बेहतर चीजें बनानी भी पड़ती हैं। नाइट दिखाते हैं कि ये प्रक्रिया कितनी जटिल, विरोधाभासी और अक्सर अधूरी रहती है, लेकिन फिर भी आम लोगों की एकजुटता से इतिहास बदला जा सकता है।
बिल्कुल, ये किताब हमें याद दिलाती है कि बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।